Hari Jaya Gopi Jana Ballabha Girivar Dhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivar Dhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivar Dhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, 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 Hare 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 Rama, 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 Hare 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 Krishna, 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 Hare 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 Rama, 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 Hare Hare जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की श्री श्री निताई गौर सुंदर की श्री श्री कृष्ण बलराम की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गुरु एम गौरांग की।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज हमारे बीच में परम पूज्य वृंदावन चंद्र स्वामी महाराज जी वृंदावन चंद्रदास गोस्वामी महाराज जी पधारे हैं। ये श्रील राधा गोविंद महाराज जी के एक वरिष्ठ शिष्य हैं, उनकी नेव्यू मीन्स भांजा है, उनके भांजा है, भतीजा है। और वृंदावन में इनका निवास स्थान है। श्रील प्रभुपाद जी को 1977 में मिला था इन्होंने, और भक्ति शास्त्री कोर्स बहुत सालों साल VIHC में शामिल होकर कंडक्ट करके आए हैं। बहुत सालों से प्रचार करते हैं महाराज जी बिहार में, झारखंड में, और भारत के विविध प्रदेशों में, और भारत के बाहर बर्मा में। हम लोगों को इनकी दिव्य संघ प्राप्त हुई थी कुछ शायद एक साल के पहले महाराज आए थे। उस समय हमने विनती की थी वापस लौट आइए, क्योंकि उस समय भक्त सामंत सिंधु के ये एक सत्र लिया था महाराज जी ब्रह्मचारियों को, बहुत गूढ़ तरीके से अच्छी तरीके से समझाते हैं श्रीमद् भागवत के अध्ययन, और भागवत के ऊपर सत्र बहुत बढ़िया देते हैं महाराज जी। इनकी हरिनाम दीक्षा हुई परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के द्वारा 1977 में, और संन्यास इन्होंने स्वीकारा 2019 अप्रैल में अभी। तो हमारे मंदिर में जैसे परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती महाराज, परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज, ऐसे वृंदावन में सालों साल रहकर भक्ति में डूब अपने आप को डुबा कर भक्ति करते जो आए हैं, ऐसे ही ये महाराज भी 1977 में प्रभुपाद को मिलने के बाद परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के नेतृत्व में भक्ति करके ऐसे परिपक्वता प्राप्त करके संन्यास लिए हैं। तो हमारी बहुत बड़ी सौभाग्य है, महाराज जी परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के व्यास पूजा के लिए आए थे पंढरपुर में, उसके साथ जोड़कर इधर हम भक्तों के साथ 3 दिन के लिए हैं। तो इस्कॉन कैंप मंदिर में ये 3 दिन का वृंद कैंप दे रहे हैं। तो कल अनेक ब्रह्मचारी लोग, पूरा हॉल भर गया था उधर भक्त सामंत सिंधु के ऊपर जो परिभाषा सूत्र जो है अन्याभिलषता शून्यम, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो आज आगे सत्र को जो चलाने वाले हैं इधर राधा वृंदावन चंद्र मंदिर में, आज भागवत का सत्र दे रहे हैं। आइए हम उनको स्वागत करते हैं राधा वृंदावन चंद्र मंदिर में। हरि बोल हरि बोल। परम पूज्य वृंदावन चंद्र स्वामी महाराज की।
ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंध दीनबन्ध जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायत कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जैन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंध के 28वें अध्याय का 19 नंबर का श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय न मयि अनासिते भुङ्क्ते अस्नाते स्नाति मत्परा मयि रुष्टे सुसंत्रस्ता भर्त्सिते यत्वाक् भयात् न मयि अनासिते भुङ्क्ते नास्नाते स्नाति मत्परा मयि रुष्टे सुसंत्रस्ता भर्त्सिते यत्वाक् भयात् न मयि अनासिते भुङ्क्ते नास्नाते स्नाति मत्परा मयि रुष्टे सुसंत्रस्ता भर्त्सिते यत्वाक् भयात् न मयि अनासिते भुङ्क्ते नास्नाते स्नाति मत्परा मयि रुष्टे सुसंत्रस्ता भर्त्सिते यत्वाक् भयात्। माता जी न कभी नहीं मई जब तक मैं अनासिते खा नहीं लेता था भुंकते वह खाती थी न नहीं अस्नाते स्नान नहीं कर लेता था स्नाति नहाती थी, मत परा मेरे प्रति अनुरक्त मई, जब मैं रुष्ट नाराज होता था, सुसंत्रस्ता अत्यंत डरी रहती थी, भर्त्सिते जब मैं डांटता फटकारता था, यत्वाक संयमित वाणी भयात डर से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, लेकिन इस श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य पढ़ने के पहले मैं इसके पीछे के श्लोक का पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो भी बाकी रह गया, कल होना था, लेकिन परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी दूसरे टॉपिक पर चर्चा करते रहे। इसके पहले का श्लोक है, लोकांतरम गतवती मई अनाथा कुटुम्बनी वर्तिष्यते कथम त्वेषा बालकान अनुसोचति। राजा पुरंजन अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगा, हाय मेरी पत्नी इतने सारे बच्चों से परेशान होगी, जब मैं यह शरीर छोड़ दूंगा तो यह किस प्रकार परिवार के इन सभी सदस्यों का पालन करेगी। हाय वह परिवार पालन के विचार से अत्यधिक कष्ट पाएगी। तात्पर्य, अपनी पत्नी के विषय में उसके इतने सारे विचार यह सूचित करते हैं कि राजा स्त्री के विचार में कितना निमग्न था। सामान्यतः पति परायण स्त्री अत्यंत आज्ञाकारिणी पत्नी होती है, इससे पति अपनी पत्नी के प्रति आकृष्ट होता है और मृत्यु के समय वह अपनी पत्नी के विषय में बहुत अधिक सोचता है। यह अत्यंत घातक स्थिति है, जैसा कि राजा पुरंजन के जीवन से स्पष्ट है। यदि मृत्यु के समय कोई कृष्ण के बजाय अपनी स्त्री के विषय में सोचता है तो निश्चय ही भगवान के धाम वापस नहीं जा सकता, अपितु उसे स्त्री का शरीर धारण करके भौतिक जीवन का नया अध्याय प्रारंभ करना पड़ता है। आगे का श्लोक, मय्य नाशिते भुंगते नाशनाते स्नाति मत परा मई रुष्टे सुसंत्रस्ता भर्त्सिते यतवाग भयात। राजा पुरंजन अपनी पत्नी के साथ अपने पुराने व्यवहारों को सोचने लगा, उसे याद आया कि उसकी पत्नी तब तक भोजन नहीं करती थी जब तक वह स्वयं खा नहीं चुकता था, वह तब तक नहीं नहाती थी जब तक वह नहीं नहा लेता था, और वह उस पर सदा इतनी अधिक अनुरक्त थी कि यदि वह कभी झिड़क देता था और उस पर नाराज हो जाता था तो मौन रहकर उसके दुर्व्यवहार को सह लेती थी। तात्पर्य, पत्नी अपने पति के प्रति सदैव विनम्र रहती है। विनम्रता, सदाचार तथा सेवा भाव पत्नी के ऐसे गुण हैं जिससे पति उसके प्रति अत्यंत भावुक रहता है। पारिवारिक जीवन में पति या पत्नी पर अनुरक्त रहना हितकर होता है, किंतु आध्यात्मिक विकास के लिए यह अधिक उपयुक्त नहीं होता। अतः घर घर में कृष्ण भक्ति की नींव पड़नी चाहिए। यदि कृष्ण भक्ति में पति तथा पत्नी एक दूसरे पर अनुरक्त हैं तो वे दोनों लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि कृष्ण ही उनके अस्तित्व का केंद्र बिंदु है। अन्यथा यदि पति अपने पत्नी के प्रति अधिक अनुरक्त रहता है तो अगले जन्म में वह स्त्री बनता है। इस प्रकार पति पर अत्यधिक अनुरक्त होने से स्त्री को अगले जन्म में पुरुष बनना होता है। निसंदेह पुरुष बनना स्त्री के हित में है, किंतु पुरुष के लिए स्त्री बनना तनिक भी लाभप्रद नहीं है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग पुरंजन की कथा सुन रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप लगभग 2 महीने से इस कथा को सुन रहे होंगे और इस समय हमसे अधिक जानकारी आप लोगों को है। हम तो अभी पहले मैं भी पढ़ा हूँ, सुना हूँ, लेकिन अभी तो सब चीज याद नहीं है। लेकिन इस विषय में एक बात समझिए कि यह कथा बरही सत को सुना रहे हैं नारद जी। नारद जी बहुत दक्ष प्रचारक हैं। नारद जी का ऐसा व्यक्तित्व है कि देवलोक में भी प्रीचिंग करते हैं, असुर लोक में भी और भूमंडल पर भी। लेकिन उनके प्रीचिंग का स्टाइल सब जगह एक जैसा ही नहीं है। असुरों का कैसे हित होगा तो वहां दूसरे ढंग से प्रीचिंग करते हैं। और प्रीचिंग का यही दक्षता है कि व्यक्ति को देख करके, कैंडिडेट को देख करके प्रस्तुतिकरण किया जाए। बरही सत के विषय में जानना चाहिए कि वो अत्यधिक आसक्त व्यक्ति था, परिवार में आसक्त था और परिवार के उन्नति के लिए कर्मकांड में बहुत आसक्त था। बहुत यज्ञ करते थे। प्रचेताओं के परिचय में आप सुने होंगे, इनके पिता यही बरही सत है, इसके विषय में कहा गया क्रिया कांडे सुनिश्चित। ये कर्मकांड में बहुत दक्ष थे और इतना यज्ञ करते थे कि उनका एक नाम प्राचीन बरही हो गया। प्राचीन बरही नाम पड़ने का कारण था, ये यज्ञ का विधान है कि कूस के चट्टाई पर बैठ करके आहुति देते हैं। हम लोग तो बाजार से चट्टाई लाते हैं तो उसमें कूस का जड़ नहीं दिखता है, लेकिन कभी कभी जब मांगते हैं तो वैसा चट्टाई भी मिलता है। तो वास्तव में विधान यह है कि ऐसे चट्टाई पर बैठ करके आहुति देना चाहिए जो जड़ के साथ कूस से बना हुआ है और उस कूस को, कूस के जड़ को पूरब दिशा में रखते हैं। संस्कृत में पूरब को प्राची कहते हैं। तो यह तो निष्णात थे क्रिया कर्मकांड में, तो विधि पूर्वक यज्ञ करते थे। वो कूस के चट्टाई को बिछाते थे, वो उसका जड़ पूरब के तरफ होता था और ये इतना यज्ञ किए आज इस स्थान पर, थोड़े दिन के बाद उस स्थान पर, कि चट्टाई से पृथ्वी ढक गई। आस्थिता आस्त्रिता वसुधा तलम, ऐसे श्रीमद् भागवतम में है कि ये पृथ्वी ही चट्टाई से ढक गई। अब उसका जड़ पूरब होता था तो इसी से इनका एक नाम हो गया प्राचीन बरही। और ये यज्ञ में आहुति तो देते ही थे, बलि भी देते थे, धार्मिक व्यक्ति थे। लेकिन नारद जी तो समझ लिए कि इससे इसका आत्यंतिक हित होने वाला नहीं है। वो जा करके सीधे उनसे प्रश्न किए कि आप जो ये यज्ञ कर रहे हैं तो ऐसे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? वे क्या जीवन का लक्ष्य है? दो कहानी सुखा वापति, सब प्रकार के दुख समाप्त हो जाए और आत्यंतिक सुख की प्राप्ति हो जाए तो क्या आप इस यज्ञ से प्राप्त कर लेंगे? आप इसे नहीं प्राप्त करेंगे। वो प्राचीन बरही कहा कि हम इस विषय में मोहित हैं, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही कि हमको करना क्या चाहिए। लेकिन नारद जी ऐसा अनुभव किए कि सीधे इस व्यक्ति को कहते हैं कि यज्ञ का त्याग कर दो, तो यह त्याग नहीं करेगा। तो अब एक कथा प्रस्तुत करने लगे, राजा पुरंजन की कथा प्रस्तुत किए। यद्यपि अंत होते होते वे कह दिए यथा भवान, जैसे आप हैं, तो कथा के क्रम में जब राजा पुरंजन का विवाह हुआ तो अब अपने पत्नी के साथ वह भोग भोगने लगा। ये अलंकारिक भाषा है, वास्तव में जीवात्मा बुद्धि से तादात्म्य कर लिया है, लेकिन ये अलग बात है। जहां जो कहानी प्रस्तुत की जा रही है तो उस क्रम में वह अपने पत्नी के साथ विविध प्रकार से भोग कर रहा है और उसको यह पता नहीं चल रहा है कि कब सूर्योदय हुआ, कब सूर्यास्त हुआ, और भोग विलास में ही उसकी जुआवस्था समाप्त हो गई। अब उस पर काल का प्रभाव आ गया, बुढ़ापा का असर आ गया, उसको चंड वेग कहा गया, और उसके साथ एक भारी सैनिक है, 360 सैनिक है, और केवल पुरुष ही नहीं है, 360 महिला पुलिस भी है। लेकिन वो महिला पुलिस का परिचय दे रहे हैं, उसमें कुछ गोरी हैं और कुछ श्यामा है। मतलब 360 दिन है तो 360 रात्रियां भी हैं, लेकिन अब कुछ रात्रि तो अंजोरिया होता है, कुछ अंधेरिया होता है, क्या आप लोग है डार्क नाइट या जो कहते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो कृष्ण पक्ष को श्यामा कह रहा है और शुक्ल पक्ष को गोरी कह रहा है, और सब उस नगर पर आक्रमण कर दिया। उसके शरीर ही ये पूर है, अब इस पर आक्रमण किए तो ये तो जर्जर होने लगा। इसके भीतर ये पूर की रखवाली, नगर की रखवाली करने वाला एक सांप है, बड़ा तगड़ा सांप है, 5 फण है, प्राण को सांप कहा गया है, तो अपने तरफ से खूब रक्षा करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जब चंड वेग का आक्रमण हुआ, बुढ़ापा का आक्रमण हुआ, तो अब सर्प को भी, इस रक्षक को भी बहुत परेशानी होने लगी। उसका कारण यह है कि वो परिचय दे रहे हैं कि सद्य निःसारता मियात, बुढ़ापा का स्वरूप है कि अब शरीर की शक्ति कम हो जाती है, व्यक्ति निःसार हो जाता है, जो सार है, इसेंस है, वो कमजोर हो जाता है। ये सबका सब देख सकते हैं। एक व्यक्ति जो उछल करके मंच पर चढ़ता है, दौड़ करके गेंद पकड़ता है, लोग उसके विषय में बोलते हैं कि आंधी के समान गेंद को पकड़ लिया, लेकिन अब चंड वेग का आक्रमण हुआ तब उसी व्यक्ति की स्थिति हो जाती है कि बाथरूम चला जाए तो बहुत भारी पुरुषार्थ है। निसारता मियात, वो निसारता को प्राप्त हो जाता है। और इसका परिचय दे रहे हैं कि यो प्रियो प्रिय जोशिता, खास करके जो स्त्री में आसक्त है तो बुढ़ापा उसको बहुत अप्रिय है, एकदम पसंद नहीं करता है। अब पसंद करे या ना करे, उसको तो आना ही है। तो बुढ़ापा से वो पूर्व का रक्षक सर्प लड़ रहा था, लेकिन उसको बहुत कठिनाई हो रही थी। अब वो अभी थकान अनुभव करने लगा, लेकिन अपने से लड़ रहा था, और तब तक उस पर इसका जो बड़ा भाई है चंडवे का प्रज्वार का आक्रमण हो गया। प्रज्वार का अर्थ है कि मृत्यु के पहले जो बुखार आती है, सामान्यतः मरने के पहले बहुत तीव्र बुखार आता है, शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है, उसको विष्णु ज्वर कहते हैं। तो अब जब ज्वर का आक्रमण हो गया तब वो सांप भी अब सरेंडर करने लगा। वो बुढ़ापा के साथ तो लड़ रहा था, यद्यपि परेशानी महसूस कर रहा था, लेकिन अब जब प्रज्वार का आक्रमण हुआ तो एकदम अब उस नगर को छोड़ने की स्थिति में हो गया, मतलब आसन्न मृत्यु व्यक्ति हो गया। एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे किसी वृक्ष के कोटर में कोई सर्प हो, कोटर समझते हैं जो गड्ढा हो जाता है, तो उसमें सर्प कभी कभी डेरा डाल देते, लेकिन अब वृक्ष में आग लग जाए तब तो सर्प भागेगा ना। तो चंड वेग से तो लड़ रहा था, रक्षा करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अब यह जो प्रज्वार का आक्रमण हो गया, शरीर का तापमान बढ़ गया, आग लग गई, तब तो अब वो भी निर्णय ले लिया कि इसको भागना है। तो अब आसन्न मृत्यु है, लेकिन अब उस पुरंजन को चिंता अपने पत्नी की है। कह रहे हैं कि लोकांतर गतवती अहम ममेति स्वीकृत्य गृहेषु गृहकृद्धि दध्यौ प्रमोदयादीनो विप्रयोग उपस्थिते। अब जब वियोग का समय आया, उसको लग गया, लगने लगा कि अब तो हमको यहां से जाना है, अलग होना है, तो अपने पत्नी के विषय में चिंता करने लगा। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अपने पत्नी के विषय में इस समय सोच रहा है, इसका अर्थ है कि पहले वे अतिशय आसक्त है, उसके चित्त पर वही छाई हुई है, इसलिए उसके विषय में सोच रहा है। क्या सोच रहा है? लोकांतरम गतवती मय नाथा कुटुम्बनी वर्तिष्यते कथम त्वया बालका अनुसोचती, कि मैं दूसरे लोक में चला जाऊंगा तो हमारी पत्नी अब कैसे जीवन धारण करेगी, ये कैसे रहेगी। बालका अनुसोचती, अकेली नहीं है, इसके बच्चे हैं, अब ये बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी, बहुत भारी चिंता लग गया। उसको यही लग रहा है कि मैं हूं तो पालन पोषण हो रहा है, और मैं दूसरे लोक में चला जाऊंगा तो कौन पालन पोषण करेगा। देखिए बिल्कुल व्यवहारिक चीज है, जो भी वृद्ध व्यक्ति हैं तो उनको तय है कि उनको अब इस परिवार का त्याग करना है, इस संसार का त्याग करना है, लेकिन बहुत चिंतित रहते हैं अपने पत्नी और बच्चे के विषय में। बूढ़ों के समक्ष आप बैठिए जो मरणासन है, तो हम कई एक बूढ़ों को देखे हैं, अब वे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे व्यक्ति को कहते हैं थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये पुरंजन तो अब मरणासन है, लेकिन चिंता अपने पत्नी की है। देखिए व्यक्ति ये चिंता करता है, लेकिन चिंता पूर्णतः अज्ञान का फल है। यदि व्यक्ति को ज्ञान रहे तो चिंता नहीं करेगा, और बड़े बड़े लोग चिंता में पड़ जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग आता है कि युधिष्ठिर महाराज बहुत भारी चिंता में पड़ गए। अब कथा जानते हैं कि विदुर जी अपने घर का त्याग कर दिए। विदुर जी धृतराष्ट्र के भाई हैं और अपने भाई से बहुत प्रेम करते थे, उनके साथ रहते थे, लेकिन भाई का व्यवहार बहुत विषम हो गया। अब व्यवहार विषम हो गया, अब उनको पसंद नहीं पड़ रहा था। थोड़ा विषम होता और एकाध बार की घटना होती तो शायद वे सह लेते। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि यदा तु राजा ससुतान साधुन पुष्णन धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्जविष्टस्य सुतान विबंधुन प्रविश्य लक्षा भवने ददाह। सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि स्थिति यह हो गई कि यदा तू राजा ससुतान असाधु धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का अधर्म पूर्वक पालन कर रहा था, जबकि उसके पुत्र दुष्ट स्वभाव के थे, असाधु, वे साधु प्रकृति के नहीं थे, फिर भी अपने पुत्रों का अधर्म पूर्वक भी, अन्याय पूर्वक भी पालन कर रहा था। और भ्रातुर्जविष्टस्य सुतान विबंधुन, और अपने छोटे भाई के पुत्रों को, जिनके विषय में कह रहे हैं कि विबंधुन, उनके पिता नहीं थे, तो प्रवेश लक्षा भवने ददाह, उनको तो लक्षा भवन में प्रवेश करके जला दिए। और सुखदेव गोस्वामी के उक्ति पर विचार कीजिए कि प्रवेश लक्षा भवने ददा, लक्षा भवन में प्रवेश करा करके जला दिया। धृतराष्ट्र तो नहीं जलाए थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट शब्दों में करें कि ददा, वो किसको, भ्रातुर्जविष्टस्य, छोटे भाई के पुत्र हैं, विबंधुन, उनके पिता नहीं है। अरे सामान्य व्यवहार यह होता है कि जिस परिवार में किसी बच्चे के पिता की मृत्यु हो गई तो उसके चाचा या ताऊ हैं तो अपने बच्चे के समान ही ध्यान रखते हैं, कभी कभी उस पर अधिक ध्यान रखते हैं, कुछ अधिक ही ध्यान रखना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र के व्यवहार का वर्णन कर रहे हैं कि वह प्रवेश लक्षा भवने ददा, वो लक्षा भवन में प्रवेश करा करके जला दिया। धृतराष्ट्र जलाए नहीं थे, लेकिन जलाने का पूर्ण प्रयास किए थे। वो लक्षा भवन स्पेशल उनके आर्डर पर तैयार किया जा रहा था, वो पूरा भवन ही लाह का था और इतने से संतोष नहीं था। जैसे आप लोगों को तो मिट्टी का दीवाल का अनुभव है कि नहीं, मिट्टी का दीवाल बनाते हैं तो उसमें कुछ पुआल, माने कुछ छोटा छोटा टुकड़ा डालते हैं, उसको पुरेसी कहते हैं। और वो जो दीवाल बनाया जा रहा था तो सोन और पटुआ को तेल घी में डुबो करके उसके साथ डाला जाता था और ऊपर से राल छिड़क छिड़क करके सटाते थे, मतलब जो आग के संपर्क से ही एकदम तुरंत जल जाए। और ऐसे घर तैयार किए। और धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज से कह क्या रहा है कि बेटा तुम लोग राजा के पुत्र हो तो ऐसे संकीर्ण स्थान में रहना राजोचित नहीं है। कारण उसका यह था कि जब युधिष्ठिर महाराज को युवराज पद दिया धृतराष्ट्र, तो युवराज पद खूब अच्छा से संभालने लगे, युधिष्ठिर महाराज अच्छा से कार्य करने लगे। युवराज पद का अर्थ है कि जिसको आगे राजा बनना है तो राजा को असिस्ट करता है, उसका एक ऑफिस होता है, वो भी कुछ कार्य करने लगता है। इस समय आप कहें तो मोटा मोटी आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे केंद्र में दो प्रकार के मंत्री होते हैं, एक को कैबिनेट मंत्री कहते हैं, एक राज्य स्तर के। तो उसमें भी राज्य स्तर में एक आप लोग सुनते होंगे स्वतंत्र प्रभार, तो राज्य स्तर का मंत्री जिसका स्वतंत्र प्रभार है उस दर्जा के लगभग युवराज का पद होता है। युधिष्ठिर महाराज कार्य करने लगे तो उनके बहुत लोकप्रियता बढ़ने लगी। तो दुर्योधन अपने पिता से कहा कि पिताजी बहुत भारी भूल कर दिए, ऐसी लोकप्रियता बढ़ेगी तो इसको राजा के पद से वंचित करना बहुत कठिन हो जाएगा, अभी से कुछ करना चाहिए। तो अपने बेटे की बात सुन करके धृतराष्ट्र तैयारी करने लगे पांडवों को जलाने के लिए। वो घर तैयार किया गया और वे कहे कि बेटा इस संकीर्ण स्थान में क्या तुम लोग रहोगे, वहां तुम लोग जाकर के रहो, खूब अच्छा भवन तैयार हुआ है। युधिष्ठिर महाराज को पता चल गया कि हम लोगों को जलाने के लिए, हम लोगों को मारने के लिए भेजा जा रहा है। वो भीम से कहे कि हम लोगों को मारने के लिए वहां भेज रहे हैं, तो भीम कहे तब हम लोग क्यों जाएंगे, जब मारने के लिए भेज रहे हैं तो हम लोग नहीं जाएंगे। युधिष्ठिर महाराज समझाए देखो जिसको मारना है तो कोई ना कोई उपाय लगाएगा, तो नजदीक रहने पर तो और खतरा है, भोजन में ही पॉइजन दे देगा। वहां दूर रहेंगे तो कुछ उपाय कर सकते हैं। तब भीम कहे कि तब तो ठीक है, चलते हैं। तो वहां जाने पर वास्तव में जब सुरंग का पता चल गया तो युधिष्ठिर महाराज के निर्देश में भीम खुद आग लगाए थे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि प्रवेश लक्षा भवने ददाह, उस भवन में प्रवेश करा करके जला दिए, इसलिए कि धृतराष्ट्र पर जलाने का पाप लगा। वो पूरी तैयारी किया था, आग लगावे या न लगावे जलाने का पाप लगा, इस अर्थ में कह रहे हैं कि जलाया। और एक ही बात नहीं है, यदा सभायाम कुरुदेव देव्या केशा विमर्शम सुतकर्म गर्ह्यम न बारयाम। भारी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था और रो रही थी, बहुत रो रही थी। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि स्वाश्रय हरंत्या कुछ कुंकुमानी, अपने अश्रु से अपने अस्तन के कुमकुम को धो, ने अपने अश्रु से अस्तन के कुमकुम को धो रही थी। शब्द ऐसे दिए हैं कि ये दोनों पक्ष पर लागू हो सकता है। स्वाश्रय अपने अश्रु से, हरंत्य कुछ कुंकुमानी अस्तन के कुमकुम को धो रही थी। किसके अस्तन के कुमकुम को धो रही है यह नहीं कह रहे, तो स्वाभाविक समझा जाएगा कि अपने अस्तन के कुमकुम को धो रही थी, मतलब इतना वो रो रही थी कि आंख से आंसू इतने गिर रहे थे कि उसके अस्तन के कुमकुम धो रहे थे। या दूसरा अर्थ किया जा सकता है कि वो इतना विलाप कर रही थी कि शत्रु पक्ष के स्त्रियों का बुधवा होना निश्चित हो गया। अश्रु गिर रहे थे द्रौपदी के और उसका प्रभाव जाएगा अपमान करने वालों की पत्नियों, उनको विधवा होना है। और इसका प्रमाण भी है, एक जगह श्रीमद् भागवतम में आया कचस्पर्श छतायुष, द्रौपदी के केशाकर्षण का परिणाम हुआ कि उनकी आयु खत्म हो गई। तो ऐसे कई एक प्रकार से दुर्व्यवहार कर रहे थे, लेकिन न बारे आमास धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले। ऐसे कई एक घटना का उल्लेख कर रहे हैं। जब भगवान का अपमान हुआ, संधि दूत बन करके गए और दुर्योधन उनका अपमान किया, तो भगवान भी अपना रूप दिखा करके चले गए। तो भगवान के विराट रूप को देख करके धृतराष्ट्र भयभीत हो गया। तब यदोपहूता भवन प्रविष्ट, पहले तो विदुर जी रोज उनके पास जाते थे, लेकिन भगवान का अपमान किए, पांडवों का के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे तो घर पर जाना बंद कर दिए थे। लेकिन जब बुलाए यदोपहूत, जब स्लिप भेजे, बड़े भाई हैं विदुर जी आए, लेकिन भवन प्रविष्ट केवल गए, कुछ बोले नहीं। पृष्ठाय जब वे पूछे कि द्वारकाधीश चैलेंज देकर के चले गए, अब इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, हम लोगों का क्या कर्तव्य होता है, जब पूछे तो विदुर जी अस्पष्ट शब्दों में कहे भरी सभा में कि यदि आप कुल का हित चाहते हैं तो मूर्तिमान दोष को, इस पाप को यहां से निकाल दीजिए। अब इतना सुनते ही दुर्योधन तो बहुत कुपित हो गया, उसके ओठ कांपने लगे और कहने लगा कि कौ न मत्रो पजिभाव जिग्मम, अरे इस कपटी को कौन यहां बुलाया है। विदुर जी तो कुछ कहे नहीं, लेकिन कह सकते थे तुम्हारे डैड बुलाए वो कह रहा है कि कौ न मत्रो पजिभाव जिग्मम दास्यासुतम, अरे दासी का पुत्र जिसका अनाज खा रहा है उसके खिलाफ भाषण कर रहा है, निर्वास्यता, इसको निकाल दो, पूरा नगर से निकाल दो, सोसान सब चीज छीन लो, केवल सांस लेते हुए इसको जाने दो। तो भ्रातो पुरह मर्मसुताडितोपि, भाई के सामने ऐसे बोल रहा था लेकिन धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले। यद्यपि बहुत दुख लगने वाली बात थी, लेकिन माया उर्मन्यमान, विदुर जी माया को जानते हैं, माया के प्रभाव को, तो अपने से धनुष रखे और निकल गए। उसी क्रम में तीर्थ यात्रा करते हुए और उद्धव जी से मिले, मैत्रेय ऋषि से भागवत सुन रहे थे और यही प्राचीन बरही का इतिहास सुने, प्राचीन बरही के आसक्ति को सुन करके उनको भाई की स्मृति आ गई और कथा बीच में ही छोड़ करके बहुत प्रश्न किए थे, लेकिन जाते ही के भक्ति गोविंद अब कृष्ण का अनुभव होने लगा तो बंधु श्रेयस्कृत चले गए अब भाई के हित के लिए। जब युधिष्ठिर महाराज देखे कि विदुर जी आए हैं वो बहुत प्रसन्न हुए, सब लोग प्रसन्न हुए, सब प्रकार की सुविधा दी, देवत सुकम, देव लोक में जैसे सुविधा है वैसे प्रदान किया गया। लेकिन विदुर जी तो सुविधा के लिए नहीं गए थे, बंधु श्रेयस्कृत अपने भाई के कल्याण के लिए गए, उनको उपदेश दिए कई एक ढंग से। विदुर जी के उपदेश का प्रभाव हुआ कि धृतराष्ट्र निकल गए रात्रि के समय। अब धृतराष्ट्र निकले तो प्रति प्रयांतम सुबलस्य पुत्री, जब गांधारी को पता चला कि हमारे पति जा रहे हैं तो चानु जगा में उनके पीछे पीछे वह भी चल दी, क्योंकि पतिव्रता साध्वी। और युधिष्ठिर महाराज का नियम था कि स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को दान देते थे, तिलगो भूमि रुकमई दान दो जो देते हो कुछ चीज अवश्य रहता था, तिल, सोना, गाय और कुछ भूमि। और इसके बाद गृहम प्रविष्ट गुरुवंदनाय, उनका रूटीन था कि ब्राह्मणों को दान देने के बाद अपने गुरुजनों के पास जा करके, बड़े लोगों के पास जा करके नमस्कार करते थे। अब जो धृतराष्ट्र को नमस्कार करने गए तो घर में है ही नहीं है, गंधारी भी नहीं है, विदुर जी भी नहीं है। अब ये तो बहुत चिंतित हुए कि कहाँ गए हमारे ताऊ, कहाँ गए, अंधे हैं, कैसे रहेंगे, हमारे बिना वे कैसे जीवित रहेंगे, कौन उनका भरण पोषण करेगा। वे बहुत दुखी थे, संजय से पूछे, संजय कुछ बतलाया नहीं। और तब तक वहां नारद जी उपस्थित हो गए। जब नारद जी उपस्थित हो गए तो कहे कि आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आपकी गति तो सूर्य के समान है, आप बतलाइए कि हमारे ताऊ कहाँ है, हमारे चाचा कहाँ है, हमारे ताई कहाँ है, वे कैसे रह रहे होंगे। और नारद जी विचार किए कि बड़ा दुखी हो रहा है, बड़ा शोक में है, तो शोक का कारण तो इसका अज्ञान है। अरे मैं तो बतला दूंगा, लेकिन सबसे पहले इसका अज्ञान दूर करना जरूरी है। तो ये कह रहे हैं कि माँ कंचन सुचो राजन, अरे राजन किसी के विषय में शोक मत कीजिए, वे क्यों न शोक करें, यदि ईश्वर बसम जगत, सारा संसार ईश्वर के अधीन है, वे मिलाते हैं वे अलग करते हैं, तो आप शोक मत कीजिए। और आप सोच रहे हैं कि आपके बिना कैसे जीवित कोई रहेगा, पालन पोषण करने वाले भगवान हैं, आप क्या रक्षा करेंगे। काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांच भौतिक कथमन्यत गोपायत सर्पग्रस्तो यथा पर। उदाहरण दे रहे हैं कि कोई मेढक है, बेंग है, और उसको कोई सर्प अपने मुख में निगल दिया है। अब वह बेंग, वह मेढक दूसरे की रक्षा करना चाहे तो क्या रक्षा करेगा। तो उसी प्रकार काल कर्म गुणाधीनो, ये जो हमारा शरीर है तो यही काल के अधीन है, कर्म के अधीन है, गुण के अधीन है, तो दूसरे की रक्षा कैसे करेंगे। अरे तो रक्षा करेगा कौन, करेंगे भगवान रक्षा करने वाले, जीवो जीवस से जीवन, भगवान ये ऐसी सृष्टि किए हैं, पूर्ण से पूर्ण मादा, ये सृष्टि पूर्ण है, इस अर्थ में कि भगवान की व्यवस्था ऐसी है कि भगवान किसी व्यक्ति का, किसी प्राणी का कहीं भी पालन कर लेंगे, इसी अर्थ में इस संसार को पूर्ण कहा गया है। वो पालन करने वाले भगवान है, लेकिन व्यक्ति अपने अहंकार वश, अपने अज्ञान वश सोचता है कि पालन करने वाला मैं हूं, हमारे बिना कैसे हमारी पत्नी जीवित रहेगी, हमारे बच्चे जीवित रहेंगे, श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि एक व्यक्ति था वो घोड़े पर चढ़ करके जा रहा था, उसके पास एक गठरी था, वो गठरी को अपने मस्तक पर रखा था और उसको सोच रहा था कि मैं ढो रहा हूं। अरे गठरी के भार को भी तो घोड़ा ही ढो रहा है ना, ऊपर से फालतू का अपने ऊपर लोड लिया है, पीठ घोड़े के पीठ से रख लिया था। तो उसी प्रकार सब है, पालन पोषण करने वाले भगवान हैं, लेकिन आदमी चिंता में मरता रहता है। देखिए कैसे भगवान पालन पोषण करने वाले हैं, किसी से पालन पोषण करा लेंगे आप जन्म के सिद्धांत से समझ सकते हैं। पालन का सिद्धांत थोड़ा कठिन लग रहा है, नहीं दिमाग में आ रहा, लेकिन जन्म के सिद्धांत पर थोड़ा विचार कीजिए। कोई पति पत्नी है, स्त्री पुरुष है, किसी बच्चे को जन्म देते हैं, उनको अहमति भी है कि हम जन्म दिए हैं, कितने लोग कहते भी हैं, खास करके क्रोध में होते हैं, तुमको मैं जन्म दिया हूं। लेकिन थोड़ा विचार कीजिए कि वे जन्म देने वाले हैं, यदि स्त्री पुरुष जन्म देने वाले होते तो बहुत सारे स्त्री पुरुष हैं, पति पत्नी हैं, कि उनको संतान नहीं है, वे क्यों नहीं जन्म देते। अच्छा बहुत सारे पति पत्नी हैं कि वे चाहते हैं कि पुत्र को जन्म हो और तब तक पुत्री का जन्म हो जाता, वे जन्म देने वाले होते तो ऐसा क्यों होता है। तो सच्चाई यह है कि उनके माध्यम से भगवान जन्म देने वाले हैं। समझ में आ रही है बात ना, जन्म देने वाले भगवान है, माध्यम पति पत्नी को बनाया है। तो जैसे जन्म दे रहे हैं पति पत्नी के माध्यम से, वैसे ही माता पिता के माध्यम से पालन करा रहे हैं, और वे चाहें तो दूसरे जीव से भी पालन करा सकते हैं। तो नारद जी सबसे पहले उपदेश यही दिए कि माँ कंचन सुचो राजन, सोच मत कीजिए, सब भगवान करने वाले हैं। और इसके बाद जब उनका शोक कम हुआ तो बतलाए कि वे हरिद्वार में गए हैं, लेकिन कहे कि वे गंगा जी में स्नान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अष्टांग जो के अवलंबन से अपने चित्त को एकाग्र कर लिए हैं, आप अब वहां जाइए मत, उनको लाने के फेरे मत पड़िए। महाराज युधिष्ठिर कहे कि लाऊंगा नहीं, ठीक है, लेकिन एक बार दर्शन कर लूं। तो कहे कि ना वो भी नहीं होगा, आज के पांचवें दिन उनके शरीर का अंत हो जाएगा, तब युधिष्ठिर महाराज कह सकते हैं तब तो जाना और जरूरी है दाह संस्कार के लिए। कि ना ना इसकी चिंता मत कीजिए, उनके जोगाग्नि से उनके शरीर का दाह संस्कार हो जाएगा। तब युधिष्ठिर महाराज को कि तब तो गंधारी के लिए जाना जरूरी है कि ना वो तो उनके शरीर से आग लगेगी और उस कुटिया में आग लग जाएगी, उसी में सती हो जाएगी। वो भगवान सब व्यवस्था किए, नारद जी इनको समझा रहे, वो भगवान के व्यवस्था पर विचार करना, विश्वास करना चाहिए। वैष्णव महाराज एक कथा सुनाते हैं कि एक साधु थे जटाधारी, तो एक बार नारद जी से चैलेंज कर दिए, जाकर के जांच करके आओ कि ब्रह्मा जी सब मेंटेनेंस की व्यवस्था ठीक रखे हैं, वही मैनेजर है ना। नारद जी जाकर के पूछे कि पिताजी एक चैलेंज है, ये आपका व्यवस्था ठीक चल रहा है ना। तो ब्रह्मा जी कहे कि हाँ हाँ सब ठीक है। तो आकर के नारद जी साधु से कहे कि हाँ ठीक है। अब वो साधु बड़ा चैलेंजिंग मूड में दो चींटी को अपने जटा में बांध लिए और फिर कहे कि जा करके ब्रह्मा से पूछो कि इन चींटी के भोजन की व्यवस्था किए हैं। और ब्रह्मा जी जा करके नारद जी फिर पूछे तो कहे कि हाँ हाँ वो व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? वो साधु एक गांव में जा रहे थे तो स्त्रियां कुछ किसी कृत्य में, विवाह में या अक्षत डाल रही थी, चावल के टुकड़ा डालती है ना, तो वो उनके जटा में फंस गया है और स्नान करने से फूल गया, रेडीमेड भोजन तैयार है जाकर के। तो व्यक्ति व्यर्थ का चिंता करता है। पुरंजन बहुत चिंतित है और केवल चिंतित ही नहीं है, उसकी इतनी आसक्ति है कि अब अपने पत्नी के गुणों का स्मरण कर रहा है। वो पतिव्रता नारी है, धर्म जो नारी का उसका निर्वाह करते बहुत अच्छी बात है, तो उसमें उल्लेख कर रहा है कि बहुत गुणवती थी, बिना मुझको भोजन कराए कभी भोजन नहीं करती थी, जब तक मैं स्नान नहीं कर लेता था तब तक वो स्नान नहीं करती थी, और मैं उसको डांट देता था तो भयभीत हो जाती, रुष्ट होता था तो भयभीत हो जाती थी, और डांटने पर भी वो सह लेती थी। तो ऐसे ही अपने पत्नी के गुण का चिंतन कर रहा है आगे के कई एक श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि पति पत्नी का आसक्ति बहुत अच्छी बात है, जगत में संसार के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब भगवान भगवत प्राप्ति करने की इच्छा है तो ये आसक्ति उपयुक्त नहीं है। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि पत्नी अपने पति में आसक्त है तो उतना क्षति नहीं है जितना पति अपने पत्नी में आसक्त है, खास करके मृत्यु के समय पति अपने पत्नी का स्मरण कर रहा है वो भगवान के धाम नहीं जा सकता। इसी से विदुर जी धृतराष्ट्र को उपदेश दिए हैं कि अविज्ञात गतिर जहिया सवै धीर उदाहृत, मृत्यु तो ऐसे स्थान पर होना चाहिए कि अपने स्वजन को पता न लगे। जट भरत जी के प्रसंग में कहा गया है कि उनके पिताजी उनको वेद पढ़ाते पढ़ाते इतने उसमें अनुरक्त थे कि कुछ पढ़ाते कि गृहे एवं उपारमत, घर में ही मर गए, आश्चर्य से कह रहे। जैसे हम लोगों के लिए शौच होने का स्थान निर्धारित है, अब वहां जाकर के शौच होते हैं तो ठीक है, अब कपड़ा में ही कोई शौच कर दे, यही शौच कर दे तो उसको बहुत बुरा माना जाएगा। तो उसी तरह किसी व्यक्ति को देह त्याग तो तीर्थ में करना चाहिए, और अपने स्वजनों से घिर करके देह त्याग कर रहा है तो अच्छा नहीं माना जाता है, खास करके पुरुष को स्त्री से दूर होकर के देह त्याग करना चाहिए। और शायद इसी अर्थ में स्त्रियां चाहती हैं कि हम अपने पति के पहले देह का त्याग कर दें, तो पति चिंता में रहे। तो पत्नी आसक्त है अपने पति में तो उसको तो सदगति होगी, पुरुष शरीर प्राप्त होगा, लेकिन पति यदि आसक्त है तो उसको स्त्री शरीर मिल सकता है, तो यह उसका अधोपतन है। माफ कीजिएगा, हम सब दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुल मिला करके स्त्री शरीर को निकृष्ट बतलाया गया। यदि उसमें बहुत गुण है, भक्ति के लिए बहुत उपयुक्त है, लेकिन टोटल मिला करके पवित्रता अपवित्रता का विचार करके कई एक दृष्टि से तो स्त्री शरीर को निकृष्ट माना गया, तो पुरुष का पतन हो रहा है ना, तो यह ठीक नहीं है। और इसी से स्त्री पुरुष जब सेंटर में भगवान को कर लेते हैं, दोनों भगवान के विषय में सोचते हैं, तो दोनों का उत्थान हो जाता है। जो हो, पुरंजन के कथा में अब उसका अंतिम समय है, मृत्यु का समय उपस्थित हुआ है, लेकिन आसक्ति बस अपने स्त्री का चिंतन कर रहा है, क्या क्या अपने स्त्री के विषय में बोल रहा है इसको आप आगे के श्लोकों में सुनते रहेंगे। हरे कृष्ण। प्रश्न नहीं है ना, टाइम तो पूरा हो गया। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की।